أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث کتاب آموزش فلسفہ میں درس نمبر 13 میں چل رہی ہے. معرفت شناسی کی جب ہم نے بحث شروع کی تھی تو اس میں ہم نے ایک بحث یہ شروع کی, پہلا مسئلہ یعنی جو معرفت شناسی میں بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ آیا علم یقینی تک رسائی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, آیا انسان جو ہے وہ یقینی معرفت تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں. جنہوں نے انکار کیا تھا اس کو ہم نے ذکر کیا اور ان کو جواب دینے کی کوشش کی. تو ایک حصہ جو جواب کا تھا وہ بیان کر دیا کہ جو نقضی جواب پر مشتمل تھا. حلی جواب جو اس کا تھا, چونکہ حلی جواب ہمیشہ تفصیلی جواب ہوتا ہے, مقدمات بیان کیے جاتے ہیں, اس سے پھر نتیجہ لیا جاتا ہے, تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں یہ واضح طور پر ثبوت مل جائے گا کہ علم یقینی تک نہ صرف یہ کہ رسائی ممکن ہے, علم یقینی نہ صرف یہ کہ وہ حاصل کرنا ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے. پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب یہ سوال پیش آیا کہ آپ جب معرفت شناسی کی ان بحثوں کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو شناختیں ہیں ہماری, تمام جو اعتقادات ہیں ہمارے, وہ سچے اور مطابق بواقع نہیں ہوتے. انسان غلطی چونکہ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے, تو ہم اس طریقے سے قائل ہوں گے کہ ہمارے بعض عقائد جو ہیں, بعض جو نظریات ہیں, بعض جو تفکرات ہیں ہمارے, وہ مطابق بواقع ہوتے ہیں یعنی صحیح ہوتے ہیں, اور بعض میں غلطی کا امکان ہے اور غلط ہو بھی جاتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ غلط کون ہے اور ٹھیک کون سے عقائد با تفکرات ہیں. تو یہاں پر ڈیکارٹ کے نظریے کو بیان کیا تھا کہ ڈیکارٹ نے اپنے فلسفے کا آغاز جو ہے وہ شک سے کیا تھا, کیونکہ انسان کو اپنے شک میں شک نہیں ہے, اور اس یقین سے, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں شک کرتا ہوں یا شک رکھتا ہوں, اس وقت شک کی حالت میں ہوں, اس یقین کا سہارا لے کر اس نے اپنی فلسفی کو جو ہے اس پر قائم کیا. اور پھر یہ کہا تھا کہ جو واضح اور متمایز و مشخص ہوگا نظریہ و فکر وہ درست ہوگی و یقینی ہوگی, اور جو ایسے نہیں ہوگا تو اس میں خطا کا امکان ہے اور وہ یقینی بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس طریقے سے آ کے اس نے جدائی ڈالنے کی کوشش کی. تو اس پہ تو ہماری تفصیل سے بات ہو گئی اور ہم نے نتیجہ یہ لیا کہ ڈیکارٹ کا جو یہ بیان ہے, یہ نظریہ ہے, یہ تفکر ہے, خود یہ واضح بھی نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے, چونکہ ابھی ابہام باقی ہے, ناقص ہے. ابھی اصلی ترین سوال کا جواب ابھی اس واضح اور مشخص ہونے والا نظریہ اس کو بیان نہیں کرتا. تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریے کو بیان کریں کہ ہمارا کیا نظریہ ہے. اس میں پھر بیان یہ ہوا تھا کہ ہمیں اس بات کے راز کو کشف کرنے کے لیے کہ کیوں ہم اپنے شک میں شک نہیں کر سکتے, کیوں ہم شک کرنے والے کے وجود میں شک نہیں کر سکتے, کیوں ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں شک کرنا ممکن نہیں ہے, اس راز کو کشف کرنے کے لیے ہمیں علم کی حقیقت کے بارے میں بات کرنا ہوگی, علم کی اقسام کو جاننا ہوگا تاکہ مطلب کلیئر ہو جائے ہمارے سامنے. تو پہلی تقسیم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ علم تقسیم ہوتا ہے علم حصولی اور علم حضوری کی طرف, اور یہ بنیادی ترین تقسیم ہے. اگر یہ تقسیم سمجھ میں آ جائے, علم حصولی اور علم حضوری کی حقیقت سمجھ میں آ جائے, تو بہت سارے سوالات के जो इंसान के जहन में उठते हैं, या मगरिब फलसफा उसको हल नहीं कर सका, अगर उनकी तवज्जो होती इसकी तरफ तो उनके लिए हत्ता वो सवाल जो है वो बाकी ही ना रहता। उनकी जो फिलासफियां बाज बनी हुई हैं उन सवालात व शुबहात के नतीजे में, वो फिलासफियां असलन वजूद में ही ना आती, चूंकि इस बुनियादी तरीन नुक्ते से वो गाफिल रहे हैं। वो क्या है कि इल्म जो है वो तकसीम होता है इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी की तरफ। इस तकसीम को फकत फलसफे इस्लामी में बयान किया गया है, इस्लामी फलसफे से पहले ये तकसीम मौजूद नहीं है। और जो हमारे पास इबारात मौजूद हैं इस्लामी फलसफा के अंदर, फाराबी से शुरू होती हैं। फाराबी ने अपने फलसफे में इल्म हुजूरी के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगु की हुई है, लेकिन इब्न सीना ने न सिर्फ ये कि इल्म हुजूरी की तरफ तवज्जो की है, बल्कि इल्म हुजूरी को फलसफे में आकर उससे इस्तिफादा किया है। इब्न सीना जो है वो इंसान का अपने नफ्स के बारे में इल्म, इल्म हुजूरी है इसको बयान करते हैं, इल्म हुजूरी से इस मसले को हल करते हैं। और जब ये मसला इल्म हुजूरी का फलसफे में वारिद हुआ, तो फलसफा और मारिफत शनासी के अंदर एक बहुत बड़ा तहव्वुल वजूद में आया। यानी इंसान जिन सवालात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था, जब इल्म हुजूरी की बहस फलसफे में वारिद हुई और फलसफे में उससे इस्तिफादा होने लगा, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो हल होना शुरू हुए। तो इसकी बुनियाद पर फिर क्या है वो तहव्वुल जो है वो फलसफा इस्लामी में वजूद में आया इब्न सीना के बाद। बस इब्न सीना को पहला वो शख्स मुअर्फी किया जाता है कि जिसने जिसने इल्म हुजूरी की बहस को फलसफे में शामिल किया और फिर इसके जरिए फलसफी मसाइल को हल करने की कोशिश की। अगरचे इब्न सीना से पहले, जैसा कि अर्ज किया, फाराबी के कलाम में इल्म हुजूरी के बारे में कुछ मतालिब मिलते हैं, लेकिन उसने फलसफे में उससे इस्तिफादा नहीं किया था। बस हमारी बहस चूंकि इल्म हुजूरी के बारे में चल रही है कि जिससे फलसफे में इस्तिफादा किया गया हो, जिसके जरिए मसाइल को हल किया गया हो, तो इस एतबार से इब्न सीना जो है वो पहला शख्स जो है वो शुमार होता है अपनी किताब जो है वो अन्नफ्स के अंदर भी और उसके अलावा दूसरी बहसों के अंदर भी जो है वो किताबों के अंदर जो है वो इसको बयान किया है। इल्म हुजूरी की जो बहस है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जोह दें जाकर, जब हम इसकी हकीकत से आशनाई हासिल कर लेंगे, तो क्या होगा, मुख्तलिफ जो फलसफे हैं और मुख्तलिफ फलसफों की तरफ से जो बशर के लिए सवालात उठाए गए हैं, उनका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। मसलन इल्म हुजूरी को अगर हम मान लेते हैं, इल्म हुजूरी की हकीकत से अगर आशना हो जाते हैं, तो शक्काकियत रीशे से ही खत्म हो जाएगी। असल शक शक का मैदान ही बाकी नहीं रहेगा। यानी कोई बंदा आकर यह दावा करे कि मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है, असलन कोई आकिल इंसान यह दावा ही नहीं कर पाएगा अगर उसको मारिफत शन अगर उसको इल्म हुजूरी की हकीकत मालूम हो, इल्म हुजूरी की तरफ अगर उसका तवज्जो हो। अभी इल्म हुजूरी से क्या मुराद है बाद में हम बहस करेंगे, अभी मैं इस बहस की जो मौकईयत और अहमियत व वैल्यू है इसकी वो बयान करना चाह रहा हूं कि जिसकी तरफ तवज्जो कम दी गई है लिहाजा इसको बयान करना ज़रूरी है यहाँ पर। और ये आपको मंतिक के अंदर भी काम आएगा, चूँकि आप जैसे ही इल्म मंतिक शुरू करते हैं तो इल्म की तारीफ़, इल्म की अकसाम बयान होती हैं, इल्म उसूली और इल्म हुज़ूरी। वहाँ अगर तालिब इल्म को नहीं बयान किया जाता तो वो महसूस ये करता है एक सादा सा एक मतलब है, इसको बस बयान करना याद ना भी हुआ तो मुश्किल नहीं है आकर। लेकिन जब हम फ़लसफ़े में आकर देखते हैं तो मालूम होता है कि ये कितना बड़ा एक सरमाया है इल्म हुज़ूरी, कि जिसकी हकीकत से अगर इंसान इंसान आशना हो जाए तो बहुत सारे शुबहात जो हैं वो इंसान हल कर पाता है। बस अगर हम इल्म हुजूरी की हकीकत से आशना हो जाते हैं, उसकी तरफ तवज्जो कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो रिलेटिविज्म का भी मैदान खत्म हो जाता है। निस्बियत गिराई रिलेटिविज्म क्या कहती है कि हकीकत निस्बी है, दोस्त है हकीकत निस्बी है, एक चीज आपकी निस्बत ठीक हो मेरी निस्बत वाला, तो मुतलक तौर पर इसको साबित करते हैं, निस्बियत मुतलक जिसे कहते हैं। हर चीज, हर हकीकत क्या है? निस्बी है। अगर इल्म हुजूरी इंसान जानता हो, इल्म हुजूरी से आशना हो, तो निस्बियत मुतलक का मैदान ही बाकी नहीं बचता। असल वो कभी तसव्वुर भी नहीं करेगा कि मैं ये नजरिया दूं निस्बियत मुतलक का, कि हर चीज जो है वो निस्बी है।
बहस
निस्बी की मुख्तसर सी आज चीजें आएंगी उसमें, जो मार्फशनासी से मरबूत बहसें हैं कि आहिस्ता से उससे आशना होंगे। इसी तरीके से जो आइडियलिज्म है, और आइडियलिज्म के अंदर भी वो वाली चीज के जो आकर कहते हैं कि हर चीज जहन के अंदर है, जहन से बाहर कोई हकीकत नहीं है, ये मकतब भी खत्म हो जाता है। इस किस्म की आइडियलिज्म जो है वो वजूद नहीं रखती है। कैसे हम उसको बातिल करेंगे? इल्म हुजूरी से। इसी तरीके से जो कांट ने आकर नोमिन और फनोमिन के अंदर आकर फर्क बयान किया था, इल्म हुजूरी के जरिए ये नोमिन और फनोमिन का जो इख्तिलाफ उसने आकर बयान किया, मुतलक तौर पर उसको बयान किया और आकर कहा कि हम वाकई की शनाख्त हासिल ही नहीं कर सकते, जहन को असास करार दे दिया, जहन को बुनियाद करार दे दी, जहन मेहवर बना दिया फलसफे को, तो कांट का ये मबना भी इल्म हुजूरी के जरिए बातिल हो जाता है। और जो भी इसके बाद फिर जो मुतासिर हुए कांट से, और उसके मुतासिर होने से मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे इल्मी जो है वो मकातिब वजूद में आए हैं, वो भी बातिल हो जाते हैं। जैसा कि हेरमेनोटिक फलसफी, जैसे गाडामिर ने आकर दिया, जिसको हाइडेगर ने जो जिसको बयान किया, वो मबना जो है वो बातिल हो जाए। प्लोरिज्म दीनी ये जो है वो बातिल हो जाता है कि अगर हम इल्मे हुजूरी को जो है वो तवज्जो कर लें और उसकी तरफ जो है वो हकीकत उससे आशना हो जाए। खो ये हेरमोनोटिक फलसफी के कायल हैं, वो तफसील फिर कलामे जदीद में है, वो यहां बहस नहीं आएगी उसकी, मार्फ़शनासी से मरबूत नहीं है, लेकिन मबना यहीं पर मौजूद है, तो वो फिर यहाँ तफसील देने की उसकी ज़रूरत नहीं है। कलामी जदीद में फुर्सत हुई तो वहाँ पर इस बहस को जो है ना वो बयान करेंगे, थोड़ी बहस मुश्किल भी है ये। खुद ये इतनी अहमियत का हामिल मतलब है, पहले मुस्लिम फलासफर भी अपने फलसफे का आगाज यकीनी मारिफत से करते थे, यकीन से करते थे, चूंकि फलसफे का आगाज यकीन से होता है, लेकिन जिन यकीन से इस्तिफादा करते थे वो यकीन इल्म हुसूली के साथ मरबूत होते थे। दुरुस्त है? जैसे ही इब्ने सीना ने आकर इल्म हुजूरी को फलसफे में आकर इस्तिफादा शुरू किया, दुरुस्त है, तो यकीन दो किस्म में तकसीम हो गया, एक यकीन के जो इल्म हुसूली के साथ मरबूत है, और एक यकीन वो के जो इल्म हुजूरी के साथ मरबूत है। ये असास व बुनियाद वाकई हुआ। और आज आप देखें कि आज के दौर में तो इल्मे हुजूरी जो है वो पूरे फलसफे की बुनियाद है, यानी आगाज ही इल्मे हुजूरी के साथ होता है फलसफे का। अब बिदाया व निहाया का मुकदमा ही पढ़ लें जाकर, तो उसकी पहली सत्र के अंदर ही जो है वो इल्मे हुजूरी से आगाज है, यानी इल्मे हुजूरी इतनी अहमियत रखता था। तो ये बाद में क्या बन गया, बुनियाद व असास बन गया। जिसने हमने कहा था कि इल्म की दो किस्में, एक नजरी है और एक बदीही है। नजरी बदीही इल्म को हमने कहा था, इसमें जो बदीही अव्वली है वो क्या है, सरमाए की हैसियत रखता है। यानी अगर ये सरमाया होगा तो आगे सिलसिला बढ़ेगा, अगर सरमाया ना हुआ तो आगाज ही नहीं हो पाएगा इल्म का। तो ये सरमाया कौन है? जब इल्मे हुजूरी की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं थी, उस वक्त पाया व असास व बुनियाद व सरमाया इल्मे हुसूली के यकीनियात थे, कि उसके ऊपर बाद में बात होगी कौन कौन सी चीजें यकीनियात हैं कि जो इल्मे हुसूली के साथ मरबूत हैं, उसको बुनियाद कराते थे। लेकिन जब इल्मे हुजूरी की तरफ तवज्जो हुई और वो दाखिल हुआ फलसफे में वो बहसें, उस वक्त बुनियाद व असास क्या है, वो इल्मे हुजूरी की बनी। और यहां तक ये मतलब साबित हो चुका है कि हत्ता इल्मे हुसूली से पहले इल्मे हुजूरी है, यानी खुद इल्मे हुसूली की बुनियाद व असास भी क्या है, इल्मे हुजूरी है। इस हद तक जो है वो इसका वो है मकाम मौजूद है। खुद क्या है इल्मे हुसूली व इल्मे हुजूरी, अहमियत बहस वाज़े हो गई। इल्मे हुसूली व इल्मे हुजूरी को अगर मैं एक मिसाल के साथ बयान करूं तो समझ में आ जाएगा। मतलब अभी इस वक्त मुझे आपका इल्म है, दुरुस्त है? मैं जानता हूं कि आप इस वक्त हैं, वजूद रखते हैं। एक ये इल्म है मेरा, एक मुझे इदराक है अपने होने का, अपने होने का इल्म है। ये दो किस्म के इल्म मेरे पास पाए जाते हैं। अब अगर मैं इन दो इल्मों के दरमियान दिक्कत करूं तो मुझे एक वाज़े सा फर्क नजर आता है। क्या? कि मुझे जो आपका इल्म है ना, वो बेवास्ता मुस्तकीम डायरेक्ट नहीं है। क्यों? इस वजह से कि डायरेक्ट अगर होता तो आपको मेरे पास हाजिर होना चाहिए था, मेरे नफ्स के पास, लेकिन आप मेरे पास हाजिर तो नहीं है। आप बैठे हैं अपनी जगह पे, मैं बैठा हूं अपनी जगह पे, यानी मेरा नफ्स जो है, मेरी हकीकत, मेरी रूह जो है, मेरा नफ्स जो है वो अपनी जगह, मालूम आलिम के पास हाजिर नहीं है। तो फिर मुझे कैसे इल्म है आपसे एक वास्ते के साथ? क्या है वास्ता? कि मेरी इस आंख ने जब आपको देखा, देखकर एक मफहूम जहन में बना लिया, वो मफहूम मेरे नफ्स के पास हाजिर हुआ। उस मफहूम में एक खासियत यह है कि वो हिकायत करती है आपसे। अब मैं आपको जो देख रहा हूं वो क्या है, एक वास्ते के जरिए देख रहा हूं। क्या है वो? आपकी जो सूरत मेरे जहन में ईजाद हुई है आपको देखने के बाद, उस सूरत के तवस्सुत से मैं आपको देख रहा हूं। आप खुद मेरे पास हाजिर नहीं है, लेकिन जो मैं अपने आप को इदराक कर रहा हूं वहां पर कोई वास्ता मौजूद नहीं है। मतलब मैं जो अपने होने को इस वक्त पा रहा हूं, दर्क कर रहा हूं, इसमें कोई मफहूम बीच में नहीं है। बगैर मफहूम के मैं अपने आप को पा रहा हूं, यानी ये ताबीरें हैं समझाने के लिए, वाइल अपने आप को पाना कोई माना नहीं रखता मतलब उसमें आगे, यानी मैं अपने आप को दर्क कर रहा हूं, मैं हूं। ये जो इदराक है ना, ये जुमला मैं हूं वाला जुमला नहीं, कि बाद में तफसील आएगी इसकी, ये जो मैं इदराक कर रहा हूं कि मैं हूं, ये जो इदराक है ये बगैर वास्ते के है, इसमें कोई मफहूम नहीं, यानी मेरे और मेरे इस इदराक के दरमियान किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। बस यहां पर क्या है, मालूम हाजिर है मेरे नफ्स के पास। बस जहां पर इल्म और मालूम, आलिम और मालूम के दरमियान वास्ता मौजूद हो उसको कहते हैं इल्मे हुसूली, और जहां पर आलिम और मालूम के दरमियान वास्ता मौजूद ना हो उसको कहते हैं इल्मे हुजूरी, क्योंकि वास्ता नहीं है, खुद मालूम आलिम के पास हाजिर होता है, बगैर वास्ते के हाजिर होता है, उसका इल्म डायरेक्ट होता है। बस इल्मे हुसूली वो इल्म है कि जो वास्ते के साथ हासिल होता है, और इल्मे हुजूरी वो इल्म है कि जो बगैर वास्ते के हासिल होता है। देखें इबारत, चूंकि बहसें जो हैं वो जैसे आपको बयान किया था आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाज़ बहसें तखस्सुसी हैं, वो इबारतें हम पढ़ेंगे। फरमाते हैं कि नुखुस्तीन तकसीमी के मीतवान बराए इल्म व शनाख्त दर नज़र गरिफ्त इन अस के इल्म या बेदून वास्ते बेजात मालूम ताल्लुक में गिराद। कहते हैं पहली तकसीम के जो इल्म के लिए बयान की जाती है वो ये है कि इल्म या बगैर वास्ते के खुद मालूम के मुतालिक होगा, जात मालूम से मुराद यह कि खुद मालूम, जात मालूम, दुरुस्त है, इल्म का ताल्लुक किसके साथ है, खुद मालूम के साथ, वो मुर्तबित है डायरेक्ट बगैर वास्ते के। वा वजूद वाकई व ऐनी मालूम बराए आलिम व शख्स दर्क खुनंदे मुनकशिफ गर्दद मी गर्दद। इस इल्म हुजूरी में क्या होता है, मालूम का जो वजूद ऐनी व खारजी व वाकई होता है वही वजूद आलिम और दर्क करने वाले के लिए मुनकशिफ होता है, खुद उसका वजूद ऐनी, खुद उसका वजूद खारजी। वया वजूद खारजी आन मौरद शहूद व आगाही आलिम करार नामे गिरद। अब यह दूसरा है कि या, क्योंकि पहली सूरत यह बन गई कि मालूम का वजूद खारजी आलिम के पास हाजिर होता है बगैर वास्ते के, दूसरी सूरत यह बनती है कि मालूम का वजूद खारजी आलिम के पास जो है वो हाजिर नहीं होता, बल्कि शख्स अजराह चीजी के नमायानगर मालूम में करते थे, बल्कि शख्स क्या करता है, उस चीज के तवस्सुत से इल्म हासिल करता है कि जो चीज क्या है, नमायानगर है, हिकायत करती है, शीशे की मानिंद है, बाद में तफसील आएगी इसकी, शीशे की हैसियत रखती है कि हिकायत करती है, उस चीज के तवस्सुत से मालूम का इल्म हासिल करता है। व इस्तिलाहन सूरत या मफहूम मफहूम ज़हनी नाबीदे मेशवद, ये जो चीज कि जो नमायानगर है, जो हिकायत करने वाली है, जिसके तवस्सुत से आलिम मालूम का इल्म हासिल करता है, इस्तिलाही तौर पर उसको सूरत या मफहूम ज़हनी कहते हैं। बदबाज है, बस मालूम यह हुआ कि इल्म या मफहूम ज़हनी व सूरत के जरिए हासिल होगा या सूरत व मफहूम ज़हनी के बगैर डायरेक्ट हासिल होगा। किस्म अव्वल रहा कि जहां पर सूरत ज़हनी नहीं है, जहां पर जो है वो मफहूम ज़हनी नहीं है, जहां पर इल्म जो है वो डायरेक्ट है, आलिम मालूम, मालूम जो है उसकी जात, उसका वजूद खारजी आलिम के पास हाजिर है, उसको कहते हैं इल्म हुजूरी। व किस्म दुवम रहा इल्म हुसूली में नामे, और दूसरा जो इल्म है कि जहां पर वास्ता है, जहां पर सूरत ज़हनी है, जहां पर जो है वो मफहूम ज़हनी वास्ता बन रहा है इल्म हासिल करने का, उसको इल्म हुसूली कहते हैं। बात वाज़ेह हुई यहां तक, तो यह है इल्म हुजूरी व इल्म हुसूली। अगला मतलब जो यहां पर बयान करते हैं वो ये कि इल्म की तकसीम जो है इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी की तरफ, ये तकसीम अकली है, इस्तिक्राई नहीं है। ये भी علم منطق کے ساتھ مربوط ہے. علم منطق میں آپ نے جب پہلا حصہ علم منطق کا پڑھا اس کے آخر میں جا کر تقسیم کی بحث آتی ہے. منطق مظفر دیکھ لیں گے, منطق مظفر کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی اگر دیکھیں تو تقسیم کی بحث وہاں پر موجود ہے. تو تقسیم کو وہاں پر دو حصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقسیم یا عقلی و حصری ہوتی ہے یا تقسیم جو ہے وہ استقرائی و غیر عقلی ہوتی ہے. تقسیم حصری, تقسیم عقلی کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی دو طرف ہوتی ہیں, یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں, تیسری صورت محال ہوتا ہے فرض کرنا. یعنی تیسری صورت آپ فرض نہیں کر سکتے, فقط دو ہی صورتیں اس کی ہوں گی. اس کو کہتے ہیں تقسیم حصری و عقلی. مثلا کیسے, اگر آپ یوں آ کر کہتے ہیں کہ انسان یا مثلا کوئی بھی آپ نے انسان یا اس وقت موجود ہے یا موجود نہیں ہے, یہ تقسیم جو آپ کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ تقسیم حصری کہلاتی ہے. سنائی بھی کہتے ہیں اس کو, سنائی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دو طرف ہوتی ہیں اس کی. یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان یا پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی, اب اس سے باہر نہیں ہے. تیسری صورت کو بنا سکتے ہیں, پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے, یا پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے, کر سکتے ہیں آپ اس میں تیسری صورت. وہ بات کی بات, اسی وجہ سے حصری تقسیم سمجھانے دو طرفیں بنانے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح ہوتی ہے وجود و عدم میں, اس طرح تقسیم کی جاتی ہے. یہ ہوتی ہے تقسیم حصر عقلی. حصر عقلی تقسیم جو ہوتی ہے اس کی خصوصیت جیسا کہ بیان کیا کہ تیسری صورت فرض ہی نہیں کی جا سکتی, لیکن استقرائی میں ایسا نہیں ہوتا. استقرائی میں جو ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ اسم جو ہے یا فعل ہے یا حرف ہے یا کلمہ جو ہے وہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تقسیم کیا ہے؟ استقرائی ہے, عقلی نہیں ہے, چونکہ کلام عرب میں یہی تین چیزیں ملی ہیں تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ علم کی تقسیم کرنا علم حصولی اور علم حضوری کی طرف, یہ تقسیم حصر عقلی ہے یا غیر عقلی؟ حصر عقلی نہیں ہے, سنائی نہیں ہے, بلکہ استقرائی ہے. مثلا تو جواب یہ ہے کہ تمام فلاسفہ کا اتفاق ہے کہ جب سے یہ بحث شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کہ علم کی تقسیم علم حصولی و علم حضوری کی طرف, یہ تقسیم حصر عقلی ہے. دیکھیں عبارت, پھر بعد میں ایک نیا مطلب بیان کرتا ہوں. تقسیم علم بے ان دو تقسیم دو قسم, ان دو قسموں کی طرف علم کو تقسیم کرنا, یک تقسیم عقلی و دائر بین نفی و اثبات است. تقسیم عقلی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں نفی اور اثبات ہوتا ہے. جیسے میں نے بیان کیا یا پاکستانی ہے یا نہیں ہے, پاکستانی ہونا اثبات ہے اور نہ ہونا نفی ہے. بے ہمین جہت اسی وجہ سے حالت سومیرا در عرض این دو قسم نمی توان برائے علم فرض کرد, اسی وجہ سے ہم علم کے لیے تیسری صورت فرض ہی نہیں کر سکتے. یعنی علم از این دو قسم خارج نیست, علم ان دو قسموں سے خارج نہیں ہے, یا حصولی ہوگا یا حضوری ہوگا. کیسے یہ بنے گا؟ بیان کر چکا ہوں لیکن عبارت کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں. یا واسطے ای بین شخص عالم و ذات معلوم وجود دارد, या आलिम और खुद मालूम ज़ात मालूम के दरमियान कोई वासिता मौजूद होगा कि आगाही बे वसीला आन हासिल में शवद, के चूंकि उस वास्ते से इल्म आगाही हासिल होती है कि दर इन सूरत बे इल्म हुसूली नामीदे में शवद या नामी गर्दत, जहां वास्ता होगा वो इल्म हुसूली। वया चनीन वास्ते ई वजूद न दारद, या वास्ता मौजूद नहीं होगा। दर इन सूरत इल्म हुजूरी खाहत बुद, इस सूरत में ये क्या है, इल्म हुजूरी हो जाएगा। अब देखें यहां पे नफी इस बात है, इल्म या वास्ते के साथ हासिल होगा या बगैर वास्ते के। अगर वास्ते के साथ है तो इल्म हुसूली, अगर बगैर वास्ते के है तो इल्म हुजूरी। तीसरी सूरत फर्ज नहीं है यहां पर, बस ये हसर अकली है। लेकिन इस नजरिए के मुकाबले में एक शाज कौल मौजूद है कि जो कायल है कि इल्म की तकसीम करना इल्म हुसूली व इल्म हुजूरी की तरफ, ये हसर अकली नहीं है बल्कि है इल्म मुमकिन है। एक इल्म हो ना वो हुसूली हो ना वो हुजूरी हो। इस कौल से अगर आप आशनाई हासिल करना चाहते हैं तो किताब जो है वो आप मोहम्मद हुसैन जादे साहब की जो किताब है मारिफत शनासी में, मनाबे ए मारिफत सफा 142 पर उन्होंने इस कौल को नकल किया है। वो किस रेफरेंस से नकल किया था वो मुझे लिखना भूल गया, साहिब जो कौल हैं उसका नाम भी नहीं लिख पाया और जो उन्होंने रेफरेंस दिया था वो किताब भी छपी हुई है, यानी जिस किताब में ये नज़रिया नकल हुआ है वो किताब छपी हुई है, हुकमाए ईरान यूं करके था उस किताब का नाम, हुकमाए ईरान के बारे में है, चार जिल्दों में मौजूद है और उस किताब को जो है वो मुरत्तब जिन्होंने किया है वो एक यहाँ की बड़ी शख्सियत हैं फलसफी। बहरहाल अगर इसकी तरफ आप रुजू करेंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा और इस कौल की दलील भी मिल जाएगी कि क्यों वो इस नज़रिए कायल हुए। दूसरा जो मंबा है या दूसरा शख्स व शख्सियत जिन्होंने इस कौल को अपनाया है कि इल्म जो है वसूली व हुजूरी की तरफ ये हसर अकली नहीं है, वो हैं आयतुल्ला आसिफ मोहसिनी। अपनी किताब सिरातुल हक में जिल्द अव्वल के अंदर इल्म इलाही की जब बहस करते हैं तो वहाँ पर इस नज़रिए को इंतखाब करते हैं कि इल्म की तकसीम हुसूली व हुजूरी की तरफ ये अकली नहीं है, हसर अकली नहीं है, बल्कि हमारे पास मुमकिन है इल्म हो जो हुसूली भी ना हो और हुजूरी भी ना हो। पर अभी तक ये दो शख्स ही सामने आए हैं जितना जो है वो मुतालआ किया है। खूब आया इनकी नज़र ये ठीक है,
कोई दलील दी है कोई,
हाँ किसकी
कोई मिसाल दी है कि हुजूरी भी
ना तब ये नहीं कर सके, मैं उसको ये बयान करने लगा क्यों इन्होंने इस नजरिए को अपनाया। जब हम इल्म इलाही की बहस करते हैं इल्म कलाम व फलसफे में तो इल्म इलाही की सख्त तरीन और मुश्किल तरीन बहस जो मौजूद है वो है कि खुदावंद मुताल तमाम मखलूकात का इल्म रखता है उनकी खिलकत से पहले। ये हमारा अकीदा है कि खुदावंद मुताल तमाम मखलूकात, तमाम खुदा के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसका इल्म रखता है खिलकत से पहले। अब इसकी कैफियत में इख्तलाफ है फलासफा के दरमियान कि खुदा अगर मखलूकात को खल्क करने से पहले तमाम का इल्म रखता है तो किस किस्म का इल्म है। मशाइयों का एक अपना नज़रिया है, वो इल्म हुसूली के कायल हैं, सोवर इरतसामी नज़रिए का नाम है उनका, कि तफसील का मौरद नहीं है यहाँ पर, मैं फ़कत जिक्र कर रहा हूँ फ़लसफे में ये सारी बहसें होनी हैं। और मुल्ला सदरा का जो है वो अपना नज़रिया है, वो कहते हैं कि खुदावंद मुताल जो है वो मखलूकात को का इल्म रखता है उनकी खिलकत से पहले, और वो इल्म इल्म हुजूरी है, कबल वजूद मखलूकात इल्म हुजूरी है।
और हमने कहा है कि इल्म हजूरी में मालूम आलिम के पास हाजिर होते
जी
हैं, अभी तो मालूम खालिम भी नहीं
भाई,
हुआ।
भाई यही मुश्किलात हैं कि जिनकी वजह से जो है वो ये वाला सवाल जो है वो उनके जहन में उठा कि अब मुल्ला सदरा ने और उसके अलावा फलासफा ने तफसील से बहस की और साबित किया है कि खुदा का मखलूकात के बारे में इल्म इल्म हुजूरी है, खुदा के मौरिद में इल्म हुसूली मुमकिन ही नहीं है, खुदा इल्म हुजूरी रखता है। ये तफसील फलसफे में है, यहां पे मैंने फकर ये कौल यहां पर इस मुनासबत से जिक्र करना था। आप बिदाया नहाया पढ़ेंगे और बाकी किताबें पढ़ेंगे, वहां पर ये आएगा, और जब हम इस किताब के आखिर में इल्म इलाही की बहस में जाएंगे वहां जाकर ये बहस आएगी, तो वहां तफसील से बहस करेंगे। अब यहां पर मुख्तलिफ नजरिए जब सामने आए तो इन्होंने, इन बुजुर्गवारों ने देखा कि अगर हम इनके मबने को मानते हैं तो कोई ना कोई हमारी मारफती मुश्किल पड़ी है, अकायदी मुश्किल है, उसको हल नहीं कर पा रहे। जब ये हल नहीं कर पाए, इन्होंने ये कहा कि इल्म की दो किस्में है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुश्किल कहां फंसी हुई है, ये इल्म इलाही का मसला हल नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इल्म को मुनासिर किया हुआ है दो हिस्सों में, या उसूली या उजूरी। तो अब इन दो के साथ तो हमें मुश्किल नजर हल होती नजर नहीं आ रही है, तो बस उन्होंने नजरिया दिया कि नहीं, तीसरी किस्म भी मौजूद है और वो खुदा के मौरिद में है, इंसान वगैरह इंसान के मौरिद में तो हम समझ रहे हैं हमें मुश्किल पेश नहीं आ रही है, खुदा के मौरिद में मसला नहीं हल हो रहा। तो अब हम कहेंगे कि खुदा मखलूकात का जो इल्म रखता है कबल खिलकत, वो ना इल्म हुसूली है ना इल्म हुजूरी है, वो एक और इल्म है, क्या है नहीं पता, ये दो नहीं है। बस चूंकि इल्म इलाही का मसला ये हल नहीं कर पाए, इन्होंने आकर इल्म हुसूली व इल्म हुजूरी की जो तकसीम है उसके हसरी होने का इनकार कर दिया। तो जवाब हमारा क्या है इसको, जवाब हमारा ये है कि आप इसको गैर हसरी कह ही नहीं सकते, चूंकि खुदा अगर इल्म हासिल कर, खुदा को अगर इल्म है मखलूकात का तो इन दो हालतों से खारिज नहीं है, या मखलूकात हाजिर होंगी। अब कैफियत हुजूर एक अलग बहस है कि कबल अज खिलकत वो मालूम वो मखलूकात कैसे हाजिर हो सकते हैं खुदा के पास, ये एक अलग बहस है, मालूम का हाजिर होना खुदा के पास ये कैसे है ये अलग बहस है, लेकिन इससे बाहर नहीं है। या मालूम हाजिर है बेदूने वासिता, या हाजिर नहीं है बल्कि वास्ते के जरिए इल्म हासिल हो रहा है, खुदा का इल्म या वास्ते के साथ है या वास्ते के बगैर है, इन दो हालतों से खाली नहीं है। आप चाहे इल्म की जो भी तारीफ कर दें जाकर, इन दो हालतों से खाली, खुदा अपने अलावा जितनी भी चीजों का इल्म रखता है या वास्ते के साथ है या वास्ते के साथ नहीं है। अगर वास्ते के साथ हुआ तो इल्म हुसूली, अगर वास्ते के साथ ना हुआ तो इल्म हुजूरी। और फलसफा साबित करता है आके कि खुदा का इल्म हुसूली नहीं हो सकता, खुदा की जात के साथ साजगार नहीं है, मुल्ला सदरा का फलसफा साबित करता है, इब्ने सीना एक माना में मानता है, बहरहुल तफसील बाद में। तो पीछे इल्म हुजूरी रह जाता है आकर। तो हमारी इन बुजुर्गवार को कहना यही है कि इल्म की तकसीम हुजूरी व उसूली की तरफ ये हसर अकली है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको मुश्किल उस मबने के हल में है तो वो हल पेश किए गए हैं, दुरुस्त है कि आप उस हल राय हल को मानते नहीं हैं, लेकिन आप कोई हल नया ढूंढें, इस तरीके से ये मसला हल होने वाला नहीं है। बस इल्म हुसूली, इल्म की तकसीम इल्म हुसूली व इल्म हुजूरी ये हसरे अकली है, ये बात वाज़े व रोशन है। इसके बाद जो है वो इल्म हुजूरी के जो है वो हकीकत में वारिद हो जाते हैं, और इल्म हुजूरी कितने मवारिद में पाया जाता है, यानी आया हमारे पास इल्म हुजूरी की एक ही किस्म है या इल्म हुजूरी मुख्तलिफ मवारिद में पाया जाता है, इस तफसील में वारिद होते हैं कि बेहतरीन एक बहस है ये, कि इंशाल्लाह इसको बाद में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।